नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भीषण चक्रवात दाना आज देर रात भीतरकनिका और धामरा के बीच ओडिशा तट से टकराएगा। ओडिशा में सभी स्कूल और कॉलेज कल तक बंद। भारतीय रेलवे पूर्वी तट पर रेल सेवाएं तुरंत बहाल करने के लिए 24 घंटे काम करने वाले 9 समर्पित वॉर रूम स्थापित करेगा। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज आज से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतर सरकारी परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को गगनगीर हमले में शामिल 2 विदेशी आतंकवादियों की तस्वीरें जारी की हैं। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से पुणे में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना भीषण चक्रवात दाना आज देर रात या कल तड़के भीतरकनिका और धामरा के बीच ओडिशा तट से टकराएगा। मौसम विभाग ने क्षेत्र में दाना के टकराने के दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
ओडिशा तट पर बंगाल की खाड़ी में आज सुबह से ही तेज हवाएं चल रही है और ज्वार भट्टा भी है। बालेश्वर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर और पुरी समेत कई तटीय जिलों में बारिश शुरू हो गई है और ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, क्योंकि आज रात ओडिशा तट पर भीषण चक्रवात दाना दस्तक देने वाला है। IMD ने कहा है कि आज शाम से ओडिशा तट पर बारिश और हवा की गति बढ़ जाएगी, जबकि तट पर 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने दाना से बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना वाले विभिन्न जिलों में चक्रवात नियंत्रण कक्ष खोले हैं, जबकि मंत्रियों को IMD द्वारा पूर्वानुमानित रेड जोन जिलों का प्रभार दिया गया है। सुबह 11 बजे तक निचले इलाकों में रहने वाले 90% आबादी को बहुउद्देश्य चक्रवात केंद्रों में स्थानांतरित करने की सरकार की योजना है। आज और कल 40 से ज्यादा उड़ाने और लगभग 200 ट्रेन रद्द कर दी गई है। संभावित चक्रवात प्रभावित जिलों में उड़ीसा सरकार ने शून्य हताहत की योजना बनाई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
इस बीच ओडिशा में सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कई सरकारी संस्थान कल तक बंद कर दिए गए हैं। डॉक्टरों और सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। भारतीय तटरक्षक ICG ने चक्रवात दाना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कई उपाय किए हैं। ICG चक्रवात की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ICG ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पानी के जहाजों, विमानों और रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशनों से कहा है कि वे मछुआरों और नाविकों को लगातार अलर्ट करने का काम करें, साथ ही उनसे तुरंत तट पर लौटने और सुरक्षित आश्रय लेने का आग्रह भी किया जा रहा है। ICG ने अपने जहाजों और विमानों को भी समुद्र में किसी भी आपातकालीन स्थिति में तेजी से कार्रवाई करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार रहने को कहा है। ICG कर्मी स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ समन्वय से काम कर रहे हैं। ICG हाई अलर्ट पर है और ये अपनी समर्पित आपदा राहत टीमों और संसाधनों के साथ सहायता, बचाव और राहत कार्य प्रदान करने के लिए तैयार है। चक्रवात दाना के मद्देनजर पूर्वी तट पर रेड अलर्ट के बीच रेल सेवाओं को तुरंत बहाल करने के लिए 24 घंटे समर्पित 9 वार रूम स्थापित किए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें संबंधित क्षेत्रीय रेलवों की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने न्यूनतम व्यवधान के साथ अधिकतम तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सलाह दी कि इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। रेलवे के मुताबिक ये 9 वॉर रूम भुवनेश्वर, गार्डन रीच, खुर्दा रोड, विशाखापत्तनम, संबलपुर, चक्रधरपुर, आद्रा, रांची, खड़गपुर और बालासोर के रेल मंडल कार्यालयों में स्थापित किए जाएंगे। निर्बाध संचार के लिए 20 सैटेलाइट फोन के साथ वॉर रूम और आपातकालीन नियंत्रण कक्ष का प्रचालन किया जाएगा। सभी प्रमुख स्टेशनों पर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। पुरी में संपर्क के लिए दूरभाष संख्या 8926100356 और भुवनेश्वर में 8114382371 पर संपर्क किया जा सकेगा। इन सभी स्टेशनों पर शिशु आहार सहित भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त दवाओं के साथ मेडिकल टीमें विभिन्न स्थानों पर तैनात रहेंगी। इस बीच मौसम विभाग ने आज चक्रवात दाना के संभावित प्रभावों को देखते हुए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि भीषण चक्रवाती तूफान आज देर रात या कल तड़के 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस क्षेत्र को पार कर जाएगा। इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज और कल बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। इससे सटे झारखंड और उत्तर पूर्व भारत में कल तक तेज बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और केरल में भी आज बारिश की स्थिति बनी रहेगी। वर्तमान सप्ताह के दौरान देश के मध्य, पश्चिम और उत्तर पश्चिम हिस्से में वर्षा की कोई संभावना नहीं है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज अंतर सरकारी परामर्श आईजीसी की 7वीं बैठक में भाग लेने के लिए आज से भारत के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज कल अंतर सरकारी परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। आईजीसी एक पूर्ण सरकारी मंच है जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों के मंत्री अपने अधीन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं और इसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री और चांसलर को देते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जर्मन बिजनेस का एशिया प्रशांत सम्मेलन जर्मनी और इंडो पैसिफिक देशों के व्यापारिक नेताओं, अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों का एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम में जर्मनी, भारत और अन्य देशों के लगभग 650 शीर्ष व्यापारिक नेता और सीईओ भाग लेंगे। जर्मनी यूरोप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण भागीदार देशों में से एक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले देशों में भारत एक प्रमुख देश था। भारत और जर्मनी कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक, सतत विकास और स्टार्टअप के क्षेत्र में आपसी सहयोग कर रहे हैं। जर्मनी में 2 लाख से अधिक भारतीय पासपोर्ट धारक और भारतीय मूल के लोग हैं। भारतीय प्रवासियों में मुख्य रूप से पेशेवर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, व्यवसायी, नर्सें और छात्र शामिल हैं। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। वो भारतीय सेना की हरित पहल और सेना के डिजिटीकरण के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री विकास और सुरक्षा के लिए भारत के दृष्टिकोण पर एक व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, जिसमें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में व्यापक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया जाएगा। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी भी अपने संबोधन में राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना के महत्वपूर्ण योगदान और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी पहल का उल्लेख करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में नीति निर्माता, रणनीतिक विचार, शिक्षाविद, रक्षाकर्मी, कई दिग्गज और वैज्ञानिक शामिल होंगे। अमरीका, रूस, इसराइल और श्रीलंका के प्रमुख वक्ता भी संवाद में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गांधरबल जिले के मजदूरों के एक शिविर पर हुए आतंकी हमले में शामिल 2 विदेशी आतंकवादियों की फोटो जारी की है। इन फोटो को गांधरबल में गगनगीर क्षेत्र में शिविर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई फुटेज से निकाला गया है। पुलिस ने पहले बताया कि 2 विदेशी आतंकियों ने गगनगीर क्षेत्र के मजदूरों के शिविर में घुसकर निहत्ते लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में 6 गैर स्थानीय मजदूरों और एक स्थानीय डॉक्टर सहित 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए थे। अब तक पुलिस जांच टीम इस आतंकी हमले को लेकर 40 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ के लिए सोरेन सरकार जिम्मेदार है और ये चुनाव झारखंड को बचाने के लिए है।
झारखंड में इस समय बीजेपी और एनडीए का लहर है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगा, ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। ये चुनाव हम नहीं जीतेगा तो झारखंड घुसपैठिया लेके जाएगा, तुष्टिकरण का राजनीति शरम सीमा तक पहुंच जाएगा। ये चुनाव किसी को विधायक और मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव झारखंड को बसाने का चुनाव है।
वहीं राज्य के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के नेताओं को खरीद रही है और विकास के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है।
आज ये लोग झूठा आश्वासन, झूठा राशन और झूठी बातें बोल करके लोगों को चुनाव में दिग्भ्रमित करने का काम करता है। आप ये लोग बताइए, पूरा का पूरा इनके षड्यंत्र के साथ टक्कर देते हुए हम लोगों ने ये पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है।
झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरण में हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 पर भेज सकते हैं। माईगोव नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 25 अक्टूबर तक भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद कल रात नई दिल्ली लौट आए। अपनी यात्रा के दौरान श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन सायद अल नाहयान के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पश्चिमी राज्यों के लिए 2 दिवसीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन आज राजस्थान के जयपुर में शुरू हो रहा है। इसका आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय है भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 साल पूरे होने का जश्न। प्रतिभागी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन CRS हैं। सम्मेलन में CRS से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच की शुरुआत आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से होगी। एक रिपोर्ट।
3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे टेस्ट मैच में भारत का सामना आत्मविश्वास से भरपूर न्यूजीलैंड की टीम से होगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम बेंगलुरु में पहला टेस्ट हारने के बाद जीत दर्ज करने के लिए मैदान में उतरेगी। न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट मैच में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। 1988 के बाद भारत की धरती पर न्यूजीलैंड की पहली जीत थी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ तेज होने के साथ भारत एक और हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, विशेष रूप से उस समय जब नवंबर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला शुरू हो रही है। भारत 2017 में और ऑस्ट्रेलिया 2021 और 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में 1-0 से पिछड़ने के बाद श्रृंखला में वापसी करने में सफल रहे थे। यह देखना बाकी है कि क्या भारत न्यूजीलैंड की टीम से खेलकर बाजी पलट सकता है या न्यूजीलैंड फिर से इतिहास रचेगा। माणिक शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वर्तिका तोमर।
दिव्या तोमर, सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता की खबर आज लगभग सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, परस्पर सम्मान से ही शांतिपूर्ण और स्थिर हो सकते हैं भारत चीन संबंध। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, 50 मिनट मीटिंग, 5 साल की कसर पूरी। अमर उजाला के शब्द हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सीमा पर शांति और स्थायित्व हो प्राथमिकता, हमारे संबंध विश्व के लिए भी अहम। हरिभूमि लिखता है, 5 साल बाद मिले मोदी जिनफिंग, पीएम मोदी ने चीन को दिया स्पष्ट संदेश। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबोधन को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, भारत युद्ध नहीं संवाद की कूटनीति का समर्थक। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के टाइफाइड टीके को WHO से मिली मंजूरी की खबर अमर उजाला में है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भीषण चक्रवात दाना देर रात भीतरकनिका और धामरा के बीच ओडिशा तट से टकराएगा। ओडिशा में सभी स्कूल और कॉलेज कल तक बंद। भारतीय रेलवे पूर्वी तट पर रेल सेवाएं तुरंत बहाल करने के लिए 24 घंटे काम करने वाले 9 समर्पित वॉर रूम स्थापित करेगा। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज आज से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतर सरकारी परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद के 2 संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।